न्यायाधीशों यहोशू की मृत्यु के बाद इसराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध हमारी ओर से लड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा को जाना है, मैंने जमीन उनके हाथ में दे दी है। तब यहूदा के लोगों ने अपने भाइयों शिमोनियों से कहा, कनानियों से लड़ने के लिए हमारे सामने उस देश में चलो जो हमें दिया गया है, बदले में हम आपके साथ चलेंगे। अत शिमोनियों ने उनके साथ जाकर यरूशलेम पर भी आक्रमण किया और उसे ले लिया। कई जनजातियों ने मूर्ति पूजकों को बाहर नहीं निकाला, इसलिए प्रभु के दूत ने पूछा कि तुमने मेरी आज्ञा क्यों नहीं मानी? इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं उनको तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, वे तुम्हारे लिए कांटे होंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। उस सारी पीढ़ी के अपने पुरखाओं के पास इकट्ठे हो जाने के बाद एक और पीढ़ी बड़ी हुई जो न तो यहोवा को जानती थी और न यह जानती थी कि उसने इसराइल के लिए क्या किया था। तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बाल देवताओं की उपासना करने लगे। इसराइल के विरुद्ध अपने क्रोध में यहोवा ने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया जिन्होंने उन्हें लूटा। उसने उन्हें चारों ओर उनके शत्रुओं को बेच दिया जिनका वे अब विरोध करने में सक्षम नहीं थे। जब जब इसराइल युद्ध करने को निकलता तब तब यहोवा का हाथ उनको परास्त करने के लिए उनके विरुद्ध रहता था, जैसा उसने उनसे शपथ खाई थी। संकलक की टिप्पणी, एक और पीढ़ी बड़ी हुई जो प्रभु को नहीं जानती थी, इसराइल के इतिहास में दोहराई गई प्रतीत होती है। क्या यह भी पहली सदी से सच था? वर्तमान पीढ़ी के बारे में क्या? टिप्पणियां समाप्त करें। तब यहोवा ने न्यायाधीशों को खड़ा किया जिन्होंने उन्हें इन हमलावरों के हाथों से बचाया, तो भी उन्होंने अपने न्यायियों की बात न मानी, पराए देवताओं के प्रति व्यभिचार किया और उनकी उपासना की। परंतु जब न्यायी मर गया तो लोग अपने पुरखाओं से भी अधिक भ्रष्ट हो गए और पराए देवताओं के पीछे चलने लगे और उनकी उपासना करने लगे। उन्होंने अपनी बुरी प्रथाओं और जिद्दी तरीकों को छोड़ने से इनकार कर दिया। यहोवा ने कहा, क्योंकि इस जाति ने उस वाचा को तोड़ दिया है जो मैंने उनके पुरखाओं के लिए बांधी थी और मेरी बात नहीं मानी, इस कारण मैं अब किसी जाति को उनके सामने से न निकालूंगा। यहोशू मरने के बाद चला गया। मैं उनका उपयोग इसराइल को परखने के लिए करूंगा और देखूंगा कि वे यहोवा के मार्ग पर चलेंगे या नहीं। संकलक की टिप्पणी, क्या हम उस बुराई से अवगत हैं जिसके साथ ईश्वर परीक्षण की अनुमति देता है? टिप्पणियां समाप्त करें। उथनील, इसराइली कनानी हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के बीच रहते थे। उन्होंने अपनी बेटियां ब्याह लीं और अपनी बेटियां अपने बेटों को दे दीं और अपने देवताओं की उपासना करने लगे। इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए और बाल देवताओं और अशेरा देवताओं की उपासना करने लगे। यहोवा का कोप इसराइल पर भड़का, यहां तक कि उसने उन्हें 8 वर्ष तक अराम के राजा कूशन-रिशातैम के हाथ में कर दिया और वे यहोवा की दोहाई देते रहे। यहोवा की आत्मा ओतनीएल पर उतरी और वह इसराइल का न्यायी बन गया और युद्ध करने लगा। यहोवा ने अराम के राजा कूशन-रिशातैम को उसके हाथ में कर दिया। एक बार फिर इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें याबीन के हाथ में बेच दिया। उसकी सेना का प्रधान सीसरा था जिसने 20 वर्ष तक उन पर अंधेर किया। दबोरा, उस समय दबोरा नाम की एक भविष्यवक्ता इसराइल का नेतृत्व कर रही थी और उसने बराक को बुलवाकर कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुम्हें आज्ञा देता है, जाओ नप्ताली और जबूलून के 10,000 पुरुषों को अपने साथ ले जाओ और पहाड़ की ओर चलो। ताबोर, मैं याबीन की सेना के प्रधान सीसरा को उसके रथों और सेना समेत कीशोन नदी तक ले जाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। 10,000 पुरुष उसके पीछे हो लिए और दबोरा भी उसके साथ गई। बराक के आगे बढ़ने पर यहोवा ने सीसरा और उसके सभी रथों और सेना को तलवार से मार डाला और सीसरा अपना रथ छोड़कर पैदल भाग गया। बराक ने हरोशेत हाग्गोयीम तक रथों और सेना का पीछा किया। सीसरा की सारी सेना तलवार से मारी गई, एक भी आदमी नहीं बचा। हालांकि सीसरा पैदल ही याएल के तंबू की ओर भाग गया। जैल ने एक तंबू की खूंटी और एक हथौड़ा उठाया और चुपचाप उसके पास चली गई जबकि वह थका हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उसने खूंटी को उसके मंदिर के माध्यम से जमीन में गाड़ दिया और वह मर गया। तब 40 वर्ष तक देश में शांति रही। गिदोन। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और उसने उनको 7 वर्ष तक मिद्यानियों के वश में कर दिया। मिद्यानियों ने इसराइलियों को इतना कंगाल कर दिया कि उन्होंने सहायता के लिए यहोवा की दुहाई दी। यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया जहां गिदोन मिद्यानियों से बचने के लिए अंगूर के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। जब प्रभु का दूत गिदोन को दिखाई दिया तो उसने कहा, हे पराक्रमी योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। लेकिन श्रीमान गिदोन ने उत्तर दिया, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हमारे साथ क्यों हुआ है? उसके वे सब आश्चर्यकर्म कहाँ हैं जिनके विषय हमारे पुरखाओं ने हमसे तब कहा था जब उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने हमको मिस्र से निकाल नहीं निकाला? परंतु अब यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यान के हाथ में कर दिया है। यहोवा ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुम्हारे पास जो शक्ति है उसमें जाओ और इसराइल को मिद्यान के हाथ से छुड़ाओ। क्या मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ? इसलिए गिदोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति है रखा। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, अपने पिता के झुंड में से दूसरा 7 वर्ष का बैल ले ले। अपने पिता की बाल की वेदी को ढा दो और उसके पास के अशेरा नाम खंभे को काट डालो। तब इस ऊंचाई की चोटी पर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए उचित प्रकार की वेदी बनाना। अशेरा के खंभे की जो लकड़ी तूने काटी है उसका उपयोग करके दूसरे बैल को होमबली करके चढ़ाना। गिदोन ने अपने 10 सेवकों को लिया और जैसा यहोवा ने उससे कहा था वैसा ही किया। परंतु चूंकि वह अपने परिवार और नगर के लोगों से डरता था इसलिए उसने ऐसा दिन के बजाय रात में किया। भोर को जब नगर के लोग उठे तो क्या देखा कि बाल की वेदी तोड़ी गई है और उसके पास का अशेरा नाम का खंभा कटा हुआ है और दूसरा बैल नई बनी हुई वेदी पर बलि किया हुआ है। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, यह किसने किया? जब उन्होंने ध्यान से जांच की तो उन्हें बताया गया, यह योआश के पुत्र गिदोन ने किया था। नगर के लोगों ने योआश से विनती की, अपने पुत्र को बाहर लाओ, वह अवश्य मरेगा क्योंकि उसने बाल की वेदी को तोड़ डाला है और उसके पास की अशेरा नाम मूरत को काट डाला है। परंतु योआश ने अपने चारों ओर की शत्रुतापूर्ण भीड़ को उत्तर दिया, क्या तुम बाल के पक्ष में लड़ने जा रहे हो? क्या आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो कोई उसके लिए लड़ेगा वह भोर तक मार डाला जाएगा। यदि बाल वास्तव में एक देवता है तो जब कोई उसकी वेदी को तोड़ता है तो वह अपनी रक्षा कर सकता है। अब सब मिद्यानी, अमालेकी और अन्य पूर्वी लोग एक हो गए और यर्दन पार होकर यिज्रेल की तराई में डेरे डाल दिए। तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर उतरा और उसने नरसिंगा फूंककर अबीएजेरियों को अपने पीछे होने को बुलाया। उसने मनुष्य भर में दूत भेजकर उन्हें हथियार लेने के लिए बुलाया और आशेर, जबूलून और नप्ताली में भी, और वे भी उनसे मिलने को चढ़ गए। गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार मेरे द्वारा इसराइल को बचाएगा तो मैं खलिहान में एक ऊनी ऊन रखूंगा। यदि ओस केवल ऊन पर पड़े और सारी भूमि सूखी हो तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार मेरे द्वारा इसराइल को बचाएगा, और वही हुआ। अगले दिन गिदोन जल्दी उठ गया, उसने ऊन को निचोड़ा और ओस को एक कटोरा भर पानी निचोड़ा। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, मुझ पर क्रोध न कर, मुझे बस एक और अनुरोध करने दीजिए। उनके साथ मुझे एक और परीक्षण करने की इजाजत दें। इस बार ऊन को सुखाओ और भूमि को ओस से ढको। उस रात भगवान ने वैसा ही किया। केवल ऊन सूखा था, सारी भूमि ओस से ढकी हुई थी। भोर को सवेरे यरूब्बाल अर्थात गिदोन और उसके सब जनों ने हरोद के सोते पर डेरा डाला। मिद्यान की छावनी उनके उत्तर में मोरे की पहाड़ी के निकट घाटी में थी। यहोवा ने गिदोन से कहा, तुम्हारे पास मिद्यान को उनके हाथ में करने के लिए बहुत से मनुष्य हैं, इसलिए कि इसराइल मेरे विरुद्ध घमंड न करे कि उसी के बल ने उसे बचा लिया है, इसलिए लोगों में यह घोषणा कर दे कि जो कोई भय से कांप उठे वह लौटकर गिलाद पर्वत से निकल जाए। इस प्रकार 22,000 पुरुष तो चले गए, परंतु 10,000 रह गए। परंतु यहोवा ने गिदोन से कहा, अभी भी बहुत से मनुष्य हैं, उन्हें जल के पास ले जा और मैं उन्हें वहां तेरे लिए छान डालूंगा। यदि मैं कहूं यह तेरे संग चलेगा तो वह जाएगा, परंतु यदि मैं कहता हूं यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। इसलिए गिदोन उन लोगों को पानी के पास ले गया। वहां यहोवा ने उससे कहा, जो लोग कुत्ते की तरह अपनी जीभ से पानी पीते हैं और जो पीने के लिए घुटने टेकते हैं, उन्हें अलग करो। और सब लोग पीने के लिथे घुटनों के बल झुक गए। और यहोवा ने गिदोन से कहा, उन 300 चपड़ चपड़ करके मैं तुमको बचाऊंगा और मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। बाकी सब आदमी अपने अपने स्थान पर चले जाएं। इसलिए गिदोन ने शेष इसराइलियों को उनके तंबुओं में भेज दिया, परंतु 300 को रख लिया और उन्होंने अन्यों की रसद और तुरहियां अपने अधिकार में ले ली। संकलक की टिप्पणी, जीवन में मनुष्य की जीत ईश्वर की ओर से होती है, मनुष्य की ओर से नहीं। टिप्पणियां समाप्त करें। गिदोन और उसके साथ के 100 आदमी पहरेदारी बदलने के ठीक बाद मध्य पहर के आरंभ में छावनी के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने तुरहियां बजाई और जो घड़े उनके हाथ में थे उन्हें तोड़ डाला। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यहोवा और गिदोन के लिए तलवार। जब हर एक व्यक्ति छावनी के चारों ओर अपना अपना स्थान जमाए हुए था, तब सभी मिद्यानी चिल्लाते हुए भागे। मिद्यान की सेना और उसके दो राजा भाग गए, लेकिन उसने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूरी सेना को मार गिराया। इसराइलियों ने गिदोन से कहा, हम पर शासन करो, तुम अपने बेटे और अपने पोते, क्योंकि तुमने हमें मिद्यान के हाथ से बचाया है। परंतु गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम पर प्रभुता न करूंगा और न मेरा पुत्र तुम पर प्रभुता करेगा। यहोवा तुम पर शासन करेगा। गिदोन के जीवन काल के दौरान भूमि ने 40 वर्षों तक शांति का आनंद लिया। जैसे ही गिदोन मरा, इसराइली फिर से बाल देवताओं के अधीन हो गए। अबीमेलेक, गिदोन के पुत्र अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को मार डाला। शकेम के लोगों ने उसे राजा बनाया और उसके शासनकाल के दौरान उसने शहरों को नष्ट करते हुए कई लोगों को मार डाला। अबीमेलेक द्वारा इसराइल पर 3 वर्ष तक शासन करने के बाद परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के नागरिकों के बीच एक दुष्ट आत्मा भेजी, जिसने अबीमेलेक के विरुद्ध विश्वासघात किया। गाल ने शकेम के नागरिकों को बाहर निकाला और अबीमेलेक से युद्ध किया। अबीमेलेक ने उसका पीछा किया और भागने में बहुत से लोग घायल होकर गिर पड़े। अगले दिन शकेम के लोग उन खेतों में गए जहां अबीमेलेक ने घात लगाई थी। उस पूरे दिन अबीमेलेक ने नगर पर तब तक आक्रमण किया जब तक उसने उस पर कब्जा नहीं कर लिया और उसके लोगों को मार नहीं डाला। तब उसने नगर को नष्ट कर दिया और उस पर नमक बिखेर दिया। अबीमेलेक ने थेबेस को जाकर उसे घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। हालांकि शहर के अंदर एक मजबूत मीनार थी, जिसकी ओर शहर के सभी पुरुष और महिलाएं सभी लोग भाग गए थे। उन्होंने खुद को अंदर बंद कर लिया और टावर की छत पर चढ़ गए। अबीमेलेक मीनार पर गया और उस पर धावा बोल दिया। लेकिन जैसे ही वह टावर में आग लगाने के लिए उसके प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, एक महिला ने उसके सिर पर चक्की का ऊपरी पार्ट गिरा दिया, जिससे उसकी खोपड़ी फट गई। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दुष्टता का बदला दिया जो अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों की हत्या करके अपने पिता के साथ की थी। इस्साकार के एक आदमी अबीमेलेक के समय के बाद तोला इसराइल को बचाने के लिए उठा। वह एप्रैम के पहाड़ी देश शमीर में रहता था। उसने 23 वर्ष तक इसराइल का नेतृत्व किया, तब वह मर गया और उसे शमीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलाद का याईर आया, जिसने 22 वर्ष तक इसराइल का नेतृत्व किया। जब याईर की मृत्यु हुई तो उसे कामोन में दफनाया गया। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। वे बाल देवताओं, अश्तोरेत देवताओं और अराम, सीदोन, मोआब के देवताओं और अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करते थे, क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा को त्याग दिया और उसकी सेवा फिर न की। इस कारण वह उन पर क्रोधित हुआ। उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के हाथ में बेच दिया और उन्होंने उसी वर्ष उन्हें चूर चूर कर दिया। वे 18 वर्ष तक इसराइल के सब लोगों पर अंधेर करते रहे। तब इसराइल ने यहोवा की दोहाई दी, इसलिए उन्होंने पराये देवताओं को अपने बीच से दूर करके यहोवा की उपासना की और वह इसराइल के दुहक पर अधीर हो गया। यिप्तह गिलादी यिप्तह वीर तो था, परंतु वेश्या का पुत्र था। फलस्वरूप उसके भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया, इसलिए वह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और निकम्मे लोग यिप्तह के पास इकट्ठे होकर उसके साथ निकल गए। जब अम्मोनियों ने इसराइल से युद्ध किया, तब गिलाद के पुरनिये यिप्तह को लाने को गए और कहा, आओ और हमारा नेता बनो कि हम अम्मोनियों से लड़ सकें। तब यिप्तह ने अम्मोनी राजा के पास दूत भेजकर यह प्रश्न पूछा, तुम्हें हमसे क्या शिकायत है जो तुमने हमारे देश पर आक्रमण किया है? अम्मोनियों के राजा ने उत्तर दिया, जब इसराइल मिस्र से निकला तब उन्होंने अर्नोन से लेकर यब्बोक तक और यर्दन तक मेरा देश छीन लिया। अब इसे शांतिपूर्वक वापस कर दो। यिप्तह ने अम्मोनियों के राजा के पास दूत भेजकर कहला भेजा कि इसराइल ने मोआब की भूमि या अम्मोनियों की भूमि नहीं ली है, परंतु जब वे मिस्र से निकले तब इसराइल जंगल से होकर लाल समुद्र और कादेश तक गया। तब इसराइल ने एदोम के राजा के पास दूत भेजकर कहला भेजा, हमें अपने देश से होकर जाने की आज्ञा दे, परंतु एदोम और मोआब के राजाओं ने न सुनी और न माना। अत इसराइल कादेश में रुका रहा। तब इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने सीहोन को उसके सब जनों समेत इसराइल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उन्हें हरा दिया। इसराइल ने उस देश में रहने वाले एमोरियों की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया और अर्नोन से लेकर यब्बोक तक और जंगल से लेकर यर्दन तक की सारी भूमि पर अधिकार कर लिया। 300 वर्षों तक इसराइल ने हेशबोन, अरोएर, आसपास की बस्तियों और अर्नोन के किनारे के सभी नगरों पर कब्जा कर लिया। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, परंतु तुम मेरे विरुद्ध युद्ध छेड़कर मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। इसराइलियों और अम्मोनियों के बीच के विवाद का निर्णय आज यहोवा ही न्यायी करे। हालांकि अम्मोन के राजा ने यिप्तह द्वारा उसे भेजे गए संदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए यिप्तह गिलाद और मनश्शे को पार करके गिलाद के मिस्पा से होकर गुजरा और वहां से अम्मोनियों के विरुद्ध आगे बढ़ा। और यिप्तह ने यहोवा से यह मन्नत मानी कि यदि तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तब जब मैं अम्मोनियों के पास से विजयी होकर लौटूंगा, तब जो कोई मेरे सामने को मेरे घर के द्वार से निकलेगा वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसका बलिदान करूंगा एक होमबलि। तब यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया। उसने अरोएर से मिन्नित के आसपास हाबिल के रामीम तक 20 नगरों को उजाड़ दिया। इस प्रकार इसराइल ने अम्मोन को अपने अधीन कर लिया। जब यिप्तह मिस्पा में अपने घर लौटा तो उसकी बेटी के अलावा डफ की धुन पर नाचते हुए उससे मिलने के लिए कौन बाहर आएगा? वह इकलौती संतान थी, उसके अलावा उसका न तो कोई बेटा था और न ही बेटी। जब उसने उसे देखा तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाया, ओह मेरी बेटी, तूने मुझे दुखी और अभागा कर दिया है, क्योंकि मैंने यहोवा की मन्नत मानी है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता। यिप्तह ने 6 वर्ष तक इसराइल का नेतृत्व किया। सैमसन। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इस कारण यहोवा ने उन्हें पलिश्तियों के हाथ में 40 वर्ष के लिए सौंप दिया। दानियों के कुल में से मानोह नाम सोरावासी एक मनुष्य की स्त्री बाज थी और उसके कोई संतान न थी। प्रभु के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा, तू बाज और नी संतान है, परंतु गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा। अब इस बात का ध्यान रखना कि तू दाखमधु या अन्य किण्वित पेय न पिए और कुछ भी अशुद्ध न खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। उसके सिर पर उस्तरा न चलाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से ही परमेश्वर के लिए अलग रखा हुआ ठहरेगा और वही इसराइल को उसके हाथ से छुड़ाने का काम आरंभ करेगा। पलिश्ती। मनोहा ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, जिस ईश्वर के आदमी को आपने हमारे पास भेजा है वह हमें फिर से आकर सिखाए कि जो लड़का पैदा होने वाला है उसका पालन पोषण कैसे करें। परमेश्वर ने मानोह की सुनी और परमेश्वर का दूत फिर आया। यहोवा के दूत ने उत्तर दिया, जो कुछ मैंने उससे कहा है वह सब तेरी पत्नी को करना होगा। वह अंगूर की बेल से निकली हुई कोई वस्तु न खाए, न दाखमधु या अन्य किण्वित पेय न पिए, न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। उसे वह सब कुछ करना होगा जो मैंने उसे आदेश दिया है। संकलक की टिप्पणी, एक नाजीर प्रतिज्ञा, किसी पुरुष या महिला द्वारा किसी उद्देश्य के लिए प्रभु से अलग होने की अवधि। उन्हें शराब और अन्य किण्वित पेय से दूर रहना चाहिए और शराब या अन्य किण्वित पेय से बना सिरका नहीं पीना चाहिए। उसे अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए, अंगूर या किशमिश नहीं खाना चाहिए और सिर पर उस्तरा नहीं चलाना चाहिए। संख्या 6:2-5 से टिप्पणियां समाप्त करें। महिला ने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम सैमसन रखा। वह बड़ा हुआ और यहोवा ने उसे आशीष दी, और जब वह महनेह में था तब यहोवा का आत्मा उसे उभारने लगा। शिमशोन तिम्ना को गया और वहां एक जवान पलिश्ती स्त्री को देखा। जब वह लौट आया तब उसने अपने माता पिता से कहा, मैंने तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री देखी है, अब उसे मेरी पत्नी के रूप में प्राप्त करो। परंतु शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसे मेरे लिए ले आओ, वह मेरे लिए सही है। संकलक की टिप्पणी, व्यक्ति को शाश्वत जीवन प्राप्त करने में मदद करने के लिए जीवन साथी चुनना चाहिए। टिप्पणियां समाप्त करें। अब उसके पिता उस स्त्री को देखने के लिए नीचे गए। शिमशोन ने वहां दूल्हे की रीति के अनुसार जेवनार की। जब वह प्रकट हुआ तो उसे 30 साथी दिए गए। सैमसन ने उनसे कहा, मैं तुम्हें एक पहेली बताता हूँ, यदि तुम मुझे पर्व के 7 दिनों के भीतर उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें 30 सनी के वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। यदि तुम मुझे उत्तर नहीं बता सकते तो तुम्हें मुझे 30 सनी के वस्त्र और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। हमें अपनी पहेली बताओ, उन्होंने कहा। चलो इसे सुनते हैं, उसने उत्तर दिया, खाने वाले में से कुछ खाने को, मजबूत से बाहर, कुछ मीठा। पहेली को हल करने में असमर्थ उन्होंने सैमसन की पत्नी और परिवार को धमकी दी। बहुत विनती करने, मिन्नत करने और डांटने के बाद सैमसन ने उसकी ताकत का रहस्य उजागर किया। तब उन्होंने उसे उसकी पहेली का उत्तर दिया, तब प्रभु की आत्मा उस पर शक्तिशाली रूप से आई। वह अश्कलोन को गया और उनके 30 पुरुषों को मार डाला और उनका सामान छीन लिया और उनके वस्त्र पहेली समझाने वालों को दे दिए। वह क्रोध से जलता हुआ अपने पिता के घर गया। तम्ना के पिता ने सैमसन से कहा, मुझे पूरा यकीन था कि तुम उससे पूरी तरह नफरत करते थे, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे दोस्त को दे दिया। क्रोध में सैमसन बाहर गया और 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया और उन्हें पूंछ से पूंछ तक जोड़े में बांध दिया। फिर उसने प्रत्येक जोड़ी पूंछों पर एक मशाल बांधी, मशाले जलाई और लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेत में छोड़ दिया। उसने अंगूर के बागों और जैतून के बागों समेत खेतों और खड़े अनाज को जला दिया। जब पलिश्तियों ने निश्चित कर लिया कि यह शिमशोन है, तो उन्होंने उसे और उसके पिता को जलाकर मार डाला। सैमसन ने उनसे कहा, चूंकि तुमने ऐसा काम किया है, इसलिए मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं तुमसे अपना बदला नहीं ले लेता। उसने उन पर भयानक हमला किया और उनमें से कई को मार डाला। तब वह नीचे चला गया और एताम की चट्टान में एक गुफा में रहने लगा। कुछ समय बाद उसे दलीला से प्यार हो गया। पलिश्तियों के शासकों ने उसके पास जाकर कहा, देखो, क्या तुम उसे अपनी महान शक्ति का रहस्य दिखाने के लिए लुभा सकती हो और हम उस पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम उसे बांध सकें और उसे अपने वश में कर सकें। हम में से हर एक तुम्हें 1100 शेकेल चांदी देगा। अत दलीला ने कई बार शिमशोन से कहा, मुझे अपनी महान शक्ति का रहस्य बताओ। आखिरकार इस तरह की डांट फटकार के साथ वह उसे दिन ब दिन उकसाती रही जब तक कि वह थक कर मर नहीं गया। तो उसने उसे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, मेरे सिर पर कभी उस्तरा नहीं चलाया गया, क्योंकि मैं जन्म से ही भगवान के लिए अलग किया गया एक नाजीर हूँ। यदि मेरा सिर मुंडवा दिया जाए तो मेरी ताकत चली जाएगी और मैं किसी भी अन्य आदमी की तरह कमजोर हो जाऊंगा। जब दलीला ने देखा कि उसने उसे सब कुछ बता दिया है, तब उसने पलिश्तियों के हाकिमों के पास कहला भेजा कि एक बार फिर लौट आओ, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसलिए पलिश्तियों के शासक अपने हाथों में चांदी लेकर लौट आए। उसे अपनी गोद में सुलाकर उसने एक आदमी को बुलाकर उसके बालों की 7 लटें कटवा दीं और उसे अपने वश में करना शुरू कर दिया और उसकी शक्ति ने उसका साथ छोड़ दिया। तब उसने पुकार कर कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। वह नींद से जाग गया और सोचा, मैं पहले की तरह बाहर जाऊंगा और खुद को मुक्त कर लूंगा, परंतु वह नहीं जानता था कि प्रभु ने उसे छोड़ दिया है। तब पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ लीं और उसे गाजा में ले गए। उन्होंने उसे कांसे की बेड़ियों से बांधकर जेल में पीसने के लिए डाल दिया, लेकिन उसके सिर पर बाल मुंडवाने के बाद फिर से उगने लगे। अब पलिश्तियों के हाकिम अपने देवता दागोन के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और यह कहकर उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। जब लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने अपने परमेश्वर की स्तुति की। जब वे जोश में थे तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हमारा मनोरंजन करने के लिए सैमसन को बाहर लाओ। इसलिए उन्होंने शिमशोन को कारागार से बाहर बुलाया और उसने उनके लिए काम किया। जब उन्होंने उसे खंभों के बीच खड़ा किया, तब शिमशोन ने उस सेवक से, जिसने उसका हाथ पकड़ा था, कहा, मुझे वहां रख दे जहां मैं उन खंभों को छू सकूं जो मंदिर को संभालते हैं, ताकि मैं उन पर सहारा ले सकूं। अब मंदिर में स्त्री पुरुषों की भीड़ थी, पलिश्तियों के सब हाकिम वहां थे और छत पर कोई 3000 पुरुष और स्त्रियां शिमशोन का अभिनय देख रहे थे। तब शिमशोन ने यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, मुझे स्मरण कर। हे परमेश्वर, कृपया मुझे एक बार फिर बल दे और मुझे एक ही झटके में पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लेने दे। तब शिमशोन उन दो केंद्रीय खंभों की ओर पहुंचा जिन पर मंदिर खड़ा था। एक पर अपना दाहिना हाथ और दूसरे पर अपना बायां हाथ रखकर उनके विरुद्ध अपने आप को संभालते हुए शिमशोन ने कहा, मुझे पलिश्तियों के साथ मरने दो। तब उसने अपनी सारी शक्ति से धक्का दिया और मंदिर हाकिमों और उसमें के सब लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जब वह जीवित था, तब की तुलना में जब वह मर गया तो उसने कई लोगों को मार डाला। तब उसके भाई और उसके पिता का सारा परिवार उसे लेने के लिए नीचे गए। वे उसे वापस ले आए और सोरा और एश्ताओल के बीच उसके पिता मानोह की कब्र में दफनाया। उन्होंने 20 वर्षों तक इसराइल का नेतृत्व किया था। लेवी और उसकी उपपत्नी। एप्रैम के पहाड़ी देश के दूर देश में रहने वाले एक लेवी ने यहूदा के बेतलहम से एक सुरैतिन ले ली। लेकिन वह उससे बेवफा थी। वह उसे छोड़कर यहूदा के बेतलहम में अपने पिता के घर वापस चली गई। जब वह वहां 4 महीने रही तो उसका पति उसे वापस लौटने के लिए मनाने के लिए उसके पास गया। वह आदमी चला गया और अपने काठी बंधे गधों और उपपत्नी को साथ लेकर यबूस अर्थात यरूशलेम की ओर चला गया। जब वे यबूस के निकट थे और दिन ढलने पर था, तब सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में ठहरें और रात बिताएं। उसके गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, हम किसी पराए नगर में न जाएंगे जिसके लोग इसराइली न हों। हम गिबा की ओर चलेंगे। उन्होंने आगे कहा, आइए हम गिबा या रामा पहुंचने की कोशिश करें और उनमें से किसी एक जगह पर रात बिताएं। सो वे आगे बढ़े और बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्त हो गया। वहां वे रात बिताने के लिए रुके। वे जाकर नगर के चौक में बैठ गए, परंतु कोई उन्हें रात के लिए अपने घर में नहीं ले गया। उस शाम एप्रैम के पहाड़ी देश से एक बूढ़ा आदमी जो गिबा में रहता था, उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे, खेतों में काम करके आया। जब उसने नगर के चौराहे पर मुसाफिर को देखा तो बूढ़े ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे घर में आपका स्वागत है, आपको जो कुछ भी चाहिए मुझे देने दीजिए, केवल चौराहे पर रात मत बिताइए। तब वह उसे अपने घर में ले गया और उसके गधों को भोजन खिलाया, और जब वे आनंद कर रहे थे तब नगर के कुछ दुष्टों ने घर का द्वार खटखटाया। उन्होंने घर के मालिक बूढ़े आदमी से चिल्लाकर कहा, उस आदमी को बाहर लाओ जो तुम्हारे घर आया था, ताकि हम उसके साथ यौन संबंध बना सकें। घर के मालिक ने बाहर जाकर उनसे कहा, नहीं मेरे दोस्तों, इतना नीच मत बनो, क्योंकि यह आदमी मेरा मेहमान है, इसलिए यह अपमानजनक काम मत करो। देखो, यह मेरी कुंवारी बेटी है रखैल, मैं उन्हें अभी तुम्हारे पास ले आऊंगा और तुम उनका उपयोग कर सकते हो और जो चाहो उनके साथ कर सकते हो, परंतु इस मनुष्य के साथ ऐसा अपमानजनक काम न करो। परंतु उन पुरुषों ने उसकी न सुनी, इसलिए उस पुरुष ने अपनी सुरैतिन को पकड़कर बाहर उनके पास भेज दिया और रात भर उसके साथ बलात्कार किया और भोर को उसे छोड़ दिया। जिस घर में उसका स्वामी रह रहा था वह दरवाजे पर गिर पड़ी और दिन निकलने तक वहीं पड़ी रही। उसने उससे कहा, उठ चल दर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उस आदमी ने उसे अपने गधे पर बिठाया और घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने एक चाकू लिया और अपनी उपपत्नी के अंगरंग को 12 टुकड़ों में काट डाला और उन्हें इसराइल के सभी क्षेत्रों में भेज दिया। तब दान से लेकर बेर्शेबा तक और गिलाद देश से सब इसराइली एक मन होकर निकल आए और मिस्पा में यहोवा के सामने इकट्ठे हुए। इसराइल के गोत्रों के सभी लोगों के प्रधानों ने अर्थात तलवारों से सुसज्जित 400,000 सैनिकों ने परमेश्वर की प्रजा की सभा में अपना स्थान ले लिया। बिन्यामीनियों ने सुना कि इसराइली मिस्पा तक गए हैं, तब इसराइलियों ने कहा, हमें बताओ कि यह भयानक घटना कैसे घटी। सो उस घात की हुई स्त्री के पति लेवी ने कहा, मैं और मेरी सुरैतिन बिन्यामीन के गिबा में रात बिताने को आए थे। रात के समय गिबा के पुरुष मेरे पीछे आए और मुझे मार डालने की मनसा से घर को घेर लिया। उन्होंने मेरी उपपत्नी के साथ बलात्कार किया और वह मर गई। मैंने अपनी रखेली को लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और इसराइल के निज भाग के हर एक भाग में एक टुकड़ा भेज दिया, क्योंकि उन्होंने इसराइल में यह घिनौना और घृणित काम किया था। अब तुम सभी इसराइलियों बोलो और अपना फैसला सुनाओ। सब लोग एक मन होकर उठे और कहने लगे, हम में से कोई घर न जाएगा। तब इसराइल के गोत्रों ने बिन्यामीन के गोत्र में लोगों को यह कहला भेजा कि इस भयानक अपराध के विषय में जो तुम में हुआ है, अब गिबा के उन दुष्ट पुरुषों को सौंप दो कि हम उन्हें मार डालें और इसराइल से दुष्टता मिटा दें। परंतु बिन्यामीनियों ने अपने साथी इसराइलियों की बात न मानी। वे अपने नगरों से इसराइलियों से लड़ने के लिए गिबा में इकट्ठे हुए। उस दिन 25,000 बिन्यामीन तलवारबाज मारे गए, वे सभी वीर योद्धा थे। परंतु 600 पुरुष मुड़कर जंगल में रिम्मोन की चट्टान की ओर भाग गए और वहां वे 4 महीने तक रहे। इसराइल के लोग बिन्यामीन के पास वापस गए और सभी नगरों को, जानवरों और जो कुछ भी उन्हें मिला, तलवार से मार डाला। जिन नगरों में वे आए, उन्होंने आग लगा दी।